परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष करके उन सभी हमारे भाई बहनों का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप निश्चित रूप से परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दुर्बल भाइयों के सहन करने के विषय चर्चा करने के पश्चात अब पौलुस यहूदियों और अन्य जातियों को एक ही देह में संगठित किए जाने के विषय में कहता है। हम इसमें यह भी देखेंगे कि यहूदियों और अन्य जातियों का एक देह में संगठित किया जाना। मित्रों, इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीष प्रदान करें, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा वे अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके उन आशीषों को महसूस कर सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, बीमारी में हैं, तनाव में हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करें। उनके जीवन को स्पर्श करें, ताकि आज वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को जानते हैं। हाँ प्रभु, आप उनकी सहायता करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4 पद। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। मेरे मित्रों, इससे प्रकट होता है कि पुराने नियम में विश्वासियों के लिए भी वचन है। मुझे लगातार पत्र मिलते रहते हैं जिनमें कहा जाता है कि मुझे अब तक नहीं मालूम था कि पुराना नियम ऐसा व्यवहारिक पुस्तक है, या मुझे कभी समझ में नहीं आया कि पुराने नियम में हमारे लिए आज ऐसा गुड़ बातें लिखी गई है। मुझे कभी यह बोध नहीं हुआ था कि हम में मसीह की चर्चा की गई है। मेरे मित्रों, यहां पौलुस कहता है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। मेरे विचार में इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना। मैं किसी कलीसियाई अगुवे को बार बार यह कहते हुए सुना है, मैं बाइबल के बारे में तो अच्छा नहीं जानता हूँ, या अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, मैं अधिक नहीं जानता हूँ, और फिर वह अपने विचार सुनाता है जो वास्तव में बाइबल के विपरीत होते हैं। वह बाइबल के बारे में अधिक क्यों नहीं जानता है? ये बातें समय से पहले ही हमारी समझ के लिए लिखी गई हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन का ज्ञान ग्रहण करें। क्या आप कलीसिया के अगुवे होकर गर्व से कहते हैं कि आप बाइबल के बारे में अधिक नहीं जानते हैं? मित्रों, उचित होगा कि आप काम की बात पर आ जाएं और जान लें कि परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए क्या कहा है। बाइबल के अज्ञानी होना इस समय का सबसे बड़ा पाप है, कलीसिया में और कलीसिया के बाहर। पौलुस कहता है कि ये बातें आपकी समझ के लिए लिखी गई है। मेरे मित्रों, बाइबल का ज्ञान आपके लिए क्या करेगा? हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। परमेश्वर का वचन धीरज, सांत्वना और आशा प्रदान करता है। यदि आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप इन बातों को नहीं जानेंगे। मेरे मित्रों, आपको समाचार पत्रों से आशा प्राप्त नहीं होती है, आधुनिक साहित्य में भी आशा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर लें, आपको आशा प्राप्त नहीं होगी। आप कहीं पर भी जा करके कुछ भी करें, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। आप प्रयास करके देख लें, कहीं कुछ भी नहीं है। आज इस संसार को देख लें, अंधकार और निराशा व्याप्त है। मेरे मित्रों, एकमात्र स्थान जहां आपको आशा प्राप्त होगी वह है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी मुझसे और आपसे बातें करता है। वह आपको शांति और आशा देता है। मैं एक बार बाइबल सभा में प्रवचन कर रहा था। उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। ओह, वे दिन कैसे अंधकार और निराशा के थे। घर लौटते समय भी बहुत वर्षा हो रही थी। यहाँ हम वर्षा के कारण निराश थे। मुझे आप गलत न समझे, हमें वनस्पति के लिए निराश की आवश्यकता है, परंतु मुझे धूप अच्छी लगती है। मेरे मित्रों, आज अनेक विश्वासी बादलों के नीचे निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु कहता है यहाँ ऊपर आओ और आशा की किरणों से बस जाओ। मेरे मित्रों, बाइबल आपके लिए यही कहती है और यही करती भी है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय के 11 पद में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। एक बार मैं अध्ययन में दाऊद के बारे में शिक्षा दे रहा था, तो असंख्य जनों ने मुझे बताया कि दाऊद उनके लिए बड़े प्रोत्साहन का कारण सिद्ध हुआ है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा कि वह ऐसे अंधकार में था कि आत्महत्या करना चाहता था, परंतु दाऊद की जीवनी ने उसे बचा लिया। मेरे मित्रों, यही तो कारण है कि परमेश्वर ने अपने वचन में ये बातें लिखी है। परमेश्वर ने दाऊद के पाप को प्रकट किया जो अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य का वही चित्रण प्रकट करता है जो हमारे समझने के लिए लाभकारी हो। पुराने नियम में हर एक बात समझ ग्रहण करने के लिए लिखी गई है। हमें धीरजवंत बनाने के लिए, हमें ढारस बंधाने के लिए और हमारे जीवन में आशा लाने के लिए लिखी गई है। हम रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मेरे मित्रों, पौलुस यहाँ रुककर प्रार्थना करता है कि आशीषें जो केवल परमेश्वर के वचन से प्रभावित होती हैं, मसीह की देह में यहूदी और अन्य जाति दोनों पर प्रभाव डालें, न कि वे खाने और न खाने के बारे में एक दूसरे पर उंगली उठाएं, वरन प्रकट करें कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सहनशीलता से एक दूसरे का आदर करते हैं। हम आगे देखते हैं रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसके 6 पद में, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। ध्यान दीजिए, उनकी स्तुति में ऐसा मेल हो कि वे विश्वासियों की एकता को प्रकट करें। जब मैं छोटा था अर्थात बालक था, तब हमारे नगर में एक कलीसिया थी और हम कोने में जाकर के बैठते थे। अब उनके विषय में एक व्यंग प्रचलित है। कलीसिया एक दिन गाना गा रही थी, क्या मेरे ताज में सितारे होंगे। सो कलीसिया जब इसे गा रही थी तो किसी ने कहा, नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो इधर प्रचारक साहब कलीसिया में ये गा रहे हैं तो कहता है कि वह तो मेरी महिमा है। मेरे मित्रों, यह मात्र एक व्यंग्यात्मक कहानी है। मेरे विचार में ऐसा कभी नहीं हुआ था, परंतु कभी कभी ऐसी छवि उभर आती है। और यदि कोई कलीसिया या पासवान वास्तव में विश्वासी हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि कलीसिया की सदस्यता मात्र से आप विश्वासी नहीं हो जाते हैं। तो तीनों कलीसियां एक साथ बैठकर स्तुति गान कैसे गा सकती है? इसलिए आप ध्यान दें, तब बरकतों की बानी को सुने। हमें संसार में ऐसे ही गवाही रखना है जिसके द्वारा से हम एकता को प्रकट कर सकें, एक दूसरे को आदर दे सकें, एक दूसरे को उत्साहित कर सकें। हम रोमियो के पत्र 15 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मेरे मित्रों, मेरा अनुवाद इस प्रकार से होगा, इसलिए एक दूसरे को ऐसा ग्रहण करो जैसा मसीह ने तुम्हें परमेश्वर की महिमा के निमित्त ग्रहण किया है। परमेश्वर बलवान और दुर्बल, बड़े और छोटे, यहूदी और अन्य जाति सबको मसीह के द्वारा ग्रहण किए जाने पर स्वीकार करता है। बलवान और दुर्बल दोनों एक दूसरे के सहभागिता में ग्रहण करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर की महिमा का सर्वोच्च लक्ष्य यही है। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, आप पेंतेकोस्टल विचारों से सहमत नहीं हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि पेंतेकोस्टल भाई अपनी कलीसियाओं में आपको प्रवचन करने के लिए आमंत्रित करते हैं? मैंने कहा, क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रदत्त अनुग्रह मुझे और मुझसे अधिक है। हाल ही में पेंतेकोस्टल पास्टर का एक पत्र मुझे मिला जिसमें लिखा था, हम इतनी अधिक बातों में परस्पर सहमत हैं कि एक या दो मतभेद हम में दरार उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम विश्वास के मुख्य सिद्धांतों पर सहमत हैं, मित्रों, छोटी छोटी बातों को छोड़कर तो हमें एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए जैसे मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के निमित्त ग्रहण किया है। यदि मैं पेंतेकोस्तल भाइयों से एक जगह सहमत नहीं हूं, अन्यथा अन्य भाषा बोलना और कोई कारण नहीं देखता कि उनसे संबंध विच्छेद कर दूं, मैं केवल प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे दृश्य अर्थात मेरे सदृश्य हो जाएं और इस रीति से देखने पाएं। और रोचक बात तो यह है कि एक दिन जब हम उसकी उपस्थिति में होंगे, तब हम सब परस्पर सहमत होंगे। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि मेरे साथ सब सहमत होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बदलाव लाना है। हम सब बदल जाएंगे उसके स्वरूप और उसकी समानता में, तब हम सब परस्पर सहमत होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तम होगा कि हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां परस्पर एकता है, जिसकी हमें जरूरत है। हम रोमियो के पत्र 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियों की दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, इसका उल्लेख एकमात्र इसी स्थान में किया गया है। उसकी सेवा इसराइल तक ही सीमित थी। उसने स्वयं ही स्पष्ट कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 24 पद में, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और उसने अपने शिष्यों को भी यही निर्देश दिया, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। मेरे प्रियो, मसीह लगभग 2010 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया था कि अब्राहम, इसहाक और याकूब की दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पुष्टि करे। परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम की देह से वह एक ऐसे मनुष्य को उत्पन्न करेगा जो संपूर्ण संसार के लिए आशीष ठहरेगा। अतः मसीह आया कि यहूदियों और अन्य जातियों को आशीष प्राप्त हो। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खत्ते का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। वह यीशु हो ही नहीं सकता था यदि वह अब्राहम और दाऊद का वंशज और व्यवस्था का पालन करने वाला नहीं होता। मेरे प्रियो, खतना करने के बाद ही उसका नाम यीशु रखा गया। वह संपूर्ण व्यवस्था को पूरा करने आया था। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस ने कहा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मेरे प्रियो, पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं के सत्यापन और पूर्ति द्वारा मसीह इसराइल के लिए उद्धार लाया था, और इसी प्रकार अन्य जातियों को भी उद्धार प्राप्त हुआ। अन्य जातियों का तो निर्भर करने के लिए केवल परमेश्वर की दया ही थी। उनके पूर्वजों से तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से तो प्रतिज्ञा की थी। मेरे प्रियो, यीशु आया कि यहूदियों के पितरों से की गई प्रतिज्ञा को पूरी करे। उसके आगमन का दूसरा कारण था कि अन्य जाति दया प्राप्त कर पाएं। इस कारण अन्य जातियों को परमेश्वर का महिमान्वन करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मेरे पूर्वजों को सुसमाचार सुनाया गया। मेरे मित्रों, वे अविश्वासी थे और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य ठहरें, अर्थात उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। जैसा लिखा है, पुराने नियम के 4 संदर्भ दर्शाते हैं कि अन्य जातियों को भी परमेश्वर का महिमान्वन करना है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। यह भजन संहिता 18 उसके 49 में लिखा है। मसीह अन्य जातियों के माध्यम से परमेश्वर के भजन गा रहा है। मेरे प्रियो, यह उनके मन फिराव के संदर्भ में है। आइए हम रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। फिर कहा है कि हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। मेरे मित्रों, यह संदर्भ व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसके 43 पद का है, जो मूसा का गीत है और इसराइल के राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी सहस्त्र वर्षीय राज्य तक की है। इसमें अन्य जातियों को आमंत्रण है कि वे इसराइल के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आइए रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें। लिखा है, और फिर वे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। मित्रों, यह सबसे छोटे भजन 117 के 1 पद का संदर्भ है। अन्य जातियों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे इसराइल के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। इस एक ही पद में सब शब्द 2 बार आया है। मित्रों, हम रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और फिर यशाया कहता है कि ईशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। मित्रों ध्यान दीजिए कि यह संदर्भ यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 पद का है। यद्यपि मसीह दाऊद का वंशज है, वह अन्य जातियों पर भी राज्य करेगा। इससे परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है कि अन्य जातियों को भी मसीह को ग्रहण करना है। कुछ तो पौलुस के युग में मसीह में आ ही गए थे जो महान दिन के प्रथम फल हैं। मेरे मित्रों यह न भूलें कि पौलुस रोमियों को पत्र लिख रहा था जो अन्य जाति कलीसिया की थी, जैसे आज हम सब हैं। रोमियों की पत्री 15 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे मित्रों परमेश्वर जो आशा का दाता है, यह परमेश्वर की नई उपाधि है जो उत्साहवर्धक है, और विश्वासी का मन यहाँ प्राचीन चट्टान को देखता है जो आंधी के समान शरण स्थान है। मेरे मित्रों परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। रोमियो की पत्री का अध्ययन आपको यही प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन में आपको आनंद और शांति प्रदान की है और आपके विश्वास को दृढ़ बनाया है। मैं आशा करता हूं कि इससे आपके जीवन में आशा और सामर्थ्य प्रवाहित हुए हैं। मित्रों यह रोमियो की पत्री के सैद्धांतिक भाग के उपसंहार का आशीर्वाद है। पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों की गवाही। इस समय पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित होने की क्षमता में अपनी गवाही देता है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने व्यक्तिगत शैली में पत्र का आरंभ किया है। अब वह शैक्षिक विषयों से हटकर वही व्यक्तिगत शैली अपनाता है जिसमें उसने पत्र लेखन आरंभ किया था और रोम जाने की अपनी मनोकामना व्यक्त की थी। हम रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो आइए अब सुने रोमियो की पत्री 15 अध्याय के 14 पद में, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम आप भी भलाई से भरे और ईश्वर ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। मेरे विचार में यह एक अति मनोरम पद है। इस पद में पौलुस शैक्षिक विषयों पर स्पष्टवादिता और कठोरता के लिए रोम की कलीसिया से दीन होकर क्षमा याचना करता है। मित्रों रोम के विश्वासियों में भलाई और ज्ञान की कमी नहीं थी, इसी कारण पौलुस ने उन्हें सैद्धांतिक बातें समझाई क्योंकि वे उन्हें ग्रहण करने योग्य थे। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? मेरे प्रियो वह हमारे लिए रोमियों की पत्री छोड़ गया जिससे कि वह हमसे भी इन सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा करने पाए। मेरे प्रियो रोमियों की पत्री को समझना हमारी मसीही उन्नति का एक मुख्य भाग है। प्रत्येक विश्वासी को रोमियों की पत्री को समझने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह पुस्तक विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ बनाती है। पौलुस इस पत्र में प्रबोधन करते हुए दीनता और मधुरता का प्रदर्शन करता है। वह परमेश्वर की विरासत पर प्रभुता नहीं दर्शा रहा है। मेरे मित्रों हम रोमियो के पत्र 15 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाप करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। ध्यान दे, मैंने लिखा, अर्थात रोमियो को पत्र लिखे। वह अपने साहस का कारण दे रहा है कि वह अन्य जातियों का प्रेरित है। इस परमेश्वर प्रदत्त पद के आधार पर जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उसे प्राप्त हुआ था, वह रोम की कलीसिया को पत्र लिखकर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है। जी हाँ, वह उनकी सेवा कर रहा था। यह अभिव्यक्ति पौलुस के लेख की प्रेरणा को अधिक महत्व प्रदान करती है। वह इसराइल की उपासना की भाषा काम में लेते हुए स्वयं को सुसमाचार का सेवक दर्शाता है। मेरे मित्रों अन्य जाति व्यवस्था या धर्म से हटकर मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य हैं। यही पौलुस का प्रचार था। पवित्र बनकर पवित्र आत्मा अन्य जाति विश्वासियों में अंतर्वास करता है। कॉर्नेलियुस पहला था। पवित्र आत्मा का पवित्रीकरण कार्य यहूदियों और अन्य जातियों में उसी पल आरंभ हो जाता है जिस समय या जिस क्षण विश्वासी नए जन्म को प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा उसमें अंतर्वास करने लगता है। हमें यह स्मरण रखना है कि पौलुस अति विशेष या विशेष रूप से अन्य जातियों का प्रेरित था। महायाजक स्वरूप पौलुस अन्य जातियों के लिए बलि चढ़ा रहा था। आज इन सब बातों की गंभीरता की गहराई को नापना हमारे लिए कठिन है, परंतु हम अन्य जाति इन सब बातों में शामिल हैं। मेरे मित्रों, यदि आपने प्रेरित पौलुस को धन्यवाद नहीं कहा है तो इसी समय उसे धन्यवाद कहें। परमेश्वर ने हमें पौलुस को दिया। यही कारण है कि आज हम उसके द्वारा रोम की कलीसिया के पत्र को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उसने लिखा और इस पत्र के द्वारा वह मुझे और आपको सिखा रहा है और इस बात का स्मरण करा रहा है कि हम जो अन्य जाति के लोग हैं, हमें भी परमेश्वर की दया के द्वारा उद्धार की प्राप्ति है। मेरे मित्रों, आप कोई भी क्यों ना हो, आज रोमियो की पत्री आपके लिए भी है। वह आपको भी बचाना चाहता है, वह आपके जीवन को उद्धार देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें और उस महान उद्धार को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो इसी समय प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाएं, मैं आपके द्वारा चलाए चलना चाहता हूँ। मेरे जीवन के हर एक अपराधों को आप क्षमा करें, मेरे जीवन को आप बदल दें और मेरा संचालन आप करें। जी हाँ मेरे मित्रों, जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप आज एक विशेष निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे जो आपके जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करेगा। अपने मित्रों को भी अवश्य बताएं और अपनी गवाहियां हमें लिख करके अवश्य भेजें। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुण।